मुंबई यानी कि सपनों का शहर। लाखों लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई शहर में आते हैं और कहते हैं कि यह सपनों की नगरी मुंबई सबके सपने पूरे करती है। बस उन सपनों को साकार होते हुए देखने के लिए आपको थोड़ी हिम्मत और धैर्य रखने की जरूरत है। दोस्तों, मुंबई की गलियों से इस पॉडकास्ट में आज जिस शख्स की कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ, पेशे से वह एक ऑटो ड्राइवर है। बिल्कुल औरों की तरह वह भी काम की तलाश में मुंबई आया। राकेश एक गांव का लड़का था। उसने इतने बड़े शहर को करीब से कभी भी नहीं देखा था। ऊंची ऊंची इमारतें, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स, फैंसी लोग, समंदर और समंदर के आसपास वह जगमगाती हुई इमारतें, यह सब वह पहली बार देख रहा था। मुंबई शहर को और उसके जीने के तौर तरीकों को अपने आप में ढालने की कोशिश कर रहा था। जब उसे मुंबई शहर में कोई काम नहीं मिला, तब उसने सोचा कि वह ऑटो रिक्शा चलाकर पैसे कमा ले। वो कहते हैं ना कि माया नगरी मुंबई आपको अच्छा और बुरा दोनों वक्त दिखाती है। बस ऐसा ही कुछ राकेश के साथ भी हुआ। एक वक्त उसकी जिंदगी में ऐसा भी आया जिससे उसका इंसानियत से विश्वास ही उठ गया। वो कहते हैं ना कि भूख और खाली पर्स आपको बहुत कुछ सिखा देता है। बस राकेश भी यही कुछ देख रहा था। जब वह भूख से तड़प रहा था, तब उसकी मदद के लिए उसके पास कोई भी नहीं आया। अनजान शहर, अनजान लोग, ना हाथ में पैसा है और ना ही खाने के लिए खाना, ये सारी बातें उसे काफी चुभ रही थी। एक वक्त के लिए उसे ऐसा लगा कि वह इस शहर में क्यों आया। शायद इस शहर में आकर उसने गलती कर दी। जिस वक्त यह वह सब कुछ सोच रहा था, उस रोज मुंबई शहर में काफी जोरों की बारिश हो रही थी। शहर में रेड अलर्ट घोषित किया गया था। राकेश बारिश की वजह से अपनी ऑटो रिक्शा के साथ फ्लाईओवर के नीचे फंस गया। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा था। उसकी आधी ऑटो पानी में डूब रही थी। वह कोशिश कर रहा था, हाथ चला रहा था, निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा था, जिसकी वजह से उसका निकलना मुश्किल हो रहा था। वह डर रहा था, कांप रहा था, या यूं कहे कि अपनी मौत को वह करीब से देख ही रहा था कि उस वक्त कुछ लोगों की नजर राकेश पर पड़ी। लोगों ने और कुछ लोगों को मदद के लिए आवाज लगाई और करीब 8 लोगों ने मिलकर राकेश को और उसकी ऑटो रिक्शा को बाहर निकाला। इस एक वाक्य ने राकेश का लोगों की तरफ देखने का नजरिया बदल दिया। राकेश ने बताया कि उन्हें मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी मदद की। उन सभी ने मिलकर मेरी जान बचाई, जिसके लिए मैं हर रोज ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूं। राकेश का कहना है कि इस किस्से से उसे यह समझ आया कि इस शहर में कुछ बुरे लोग हैं तो कुछ अच्छे भी लोग हैं। इसलिए अब वह किसी की भी बातों को अपने दिल से नहीं लगाएगा। मुंबई में वैसे अब वो ठीक ठाक कमा लेता है और इस शहर के साथ साथ राकेश ने भी आगे चलते रहने का फैसला किया है। वक्त वक्त पर जब भी किसी को जरूरत हो, तो किसी को किसी भी मदद की जरूरत हो, तो वह मदद कर देता है। अपने शब्दों को खत्म करते हुए उसने कहा कि इस शहर में आने वाले लोग लाखों की भीड़ में कहीं खो जाते हैं, पर यदि आप अपनी कोशिश जारी रखते हैं तो यह शहर आपके लिए कुछ करता है, आपके सपनों को साकार करने के लिए भी जरूर तत्पर रहता है। इसलिए कोशिश करते रहिए। आप सुन रहे हैं मुंबई की गलियों से सोनाली के साथ। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मुंबई की गलियों से इस पॉडकास्ट में। दोस्तों, हमारे पॉडकास्ट का यह 4th एपिसोड है और इस पॉडकास्ट में हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसका सपना था कि वह IIT बॉम्बे में रोबोटिक्स में जीत हासिल करे। कैसा रहा होगा उसका ओडिशा से मुंबई तक का ये सफर, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबान से। तो अपने बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए।
तो मेरा नाम विश्वरंजन बेहरा है और मैं ओडिशा से हूँ और फिलहाल मैं यहाँ पे एक एनजीओ के लिए काम करता हूँ एज अ रोबोटिक्स ट्रेनर।
ओके, तो रोबोटिक्स में अपना करियर बनाने का सपना आपने कब देखा, मतलब कब लगा आपको कैसा कि मुझे रोबोटिक्स में अपना सपना बनाना चाहिए?
तो मैं स्टैंडर्ड 8 में था जब मैंने पहली बार एक रोबोकॉन के वीडियो देखे थे, रोबोकॉन के वीडियोस देखे थे एंड मैंने तभी सोच लिया था कि मैं आगे जाके रोबोटिक्स में पार्टिसिपेट करूंगा, रोबोकॉन जीतूंगा ऐसा कुछ।
तो उसके लिए फिर क्या तैयारियां की आपने?
तब मैंने यही सोचा था कि मैं एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करूंगा क्योंकि वही रोबोटिक्स जैसा फील्ड के साथ सूट कर रहा है करके।
और हुआ
नहीं एक्चुअली मुझे अपग्रेड मिल गया। कंप्यूटर साइंस की जगह मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ज्वाइन कर लिया।
मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डायरेक्ट ज्वाइन कर लिया?
जी हाँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ज्वाइन किया एंड फिर भी मैंने अपने जर्नी कंटिन्यू की रोबोटिक्स के लिए।
जैसे कि
मैंने शायद पहला साल मैंने एक ड्रोन वर्कशॉप में ज्वाइन किया, अटेंड किया एंड वहाँ पे मैंने ड्रोन बनाना सीखा और पहली बार मैंने एक ड्रोन के साथ वर्क किया एंड चलाने की कोशिश की।
तो इतना आसान था?
हाँ, वैसे इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं था, आप अगर अच्छे से यू नो इंटरेस्ट देके सीखोगे। ऑब्वियसली नया था, बहुत कुछ था लाइक कैच करने के लिए, बट इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं लगा, मज़ा आया एक्चुअली सीखने में। बना या नहीं बना वो अलग बात है, मज़ा बहुत आ रहा था बना।
अब उसको जब बनाने के वक्त मतलब जो चीज़ें हुई तब आपने क्या सीखा था, मतलब जब आपने कहा अभी कि बना नहीं बना तो तब क्या सीखा था?
कुछ नहीं, बस लाइक पहली बार हम लोग एक मोटर्स एंड ये सब के साथ सोल्डरिंग वगैरह कर रहे थे एंड नया था कंप्यूटर लैपटॉप में एक प्रोग्राम कर रहे थे फॉर रिमोट, तो वो सब सीखने में मज़ा आ रहा था और कुछ नहीं।
ओके,
हाँ,
तो फिर अब जो आपका ये सफ़र था रोबोटिक्स को लेकर उसमें क्या उतार और चढ़ाव आए थे?
मैंने जैसे कि मैंने बताया कंटिन्यू करने के लिए, तो मैंने सेकेंड ईयर में हमारे रूल था कॉलेज का, सेकेंड ईयर में हम लोग क्लब्स ज्वाइन कर सकते थे, तो हमारे कॉलेज में भी एक क्लब था रोबोटिक्स क्लब, तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया एंड यू नो एग्ज़ाम्स दिए तो उसके लिए एंड अनफॉर्चुनेटली उसमें मुझे एक रिजेक्शन मिला।
रिजेक्शन मिला आपको?
जी हाँ, रिजेक्शन मिला, पता नहीं था, अनबिलीवेबल था एंड मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट था एंड वो एक ही अपॉर्चुनिटी थी रोबोटिक्स ज्वाइन करने का एंड मुझे लगा कि ख़त्म यहाँ पे। और
मतलब तुमने सोचा कि अब रोबोटिक्स ख़त्म, रोबोटिक्स का सपना ख़त्म?
हाँ, मैंने सोच लिया था कि रोबोटिक्स का सपना ख़त्म एंड मैंने ऐसा टाइम सिचुएशन आता है कि आप लोग रिजेक्शन को फेस करते हो और मैंने भी ये पहली बार फेस किया एंड कुछ होता नहीं है, एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा दिखने लग जाता है, तो मुझे भी वही दिखने लगा कि रोबोटिक्स बंद हो गया, अब क्या करना है। तो मैंने उस लिए अपना कोर फील्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ज़्यादा सीरियसनेस दी एंड मैंने डिसाइड किया कि मैं इसी में ही अपना जर्नी आगे बढ़ाऊँ करके।
तो मतलब थोड़ी देर के लिए भूल गए कि रोबोटिक्स जाने दो?
हाँ, मैंने वही किया और कुछ ऑप्शन था नहीं ना, रिजेक्शन लेटर उसके बाद और क्या था, कुछ नहीं था, तो हाँ ठीक है चलेगा, आगे बढ़ते हैं, जो होता है देखा जाएगा। फिर मैं ऐसा करके थर्ड ईयर हो गया। तीन साल गए, सिर्फ ड्रोन ही सीखा था और कुछ नहीं सीखा था एंड मैं बीमार हो गया उस टाइम पे और मैं बीमार से जब रिकवर किया तो उस टाइम पे मेरा एक सीनियर था राजकुमार पाठी एंड एक जूनियर था प्रत्युष शेट्टी, ये दोनों ढूंढ रहे थे बहुत ही टैलेंटेड और यूनिक रोबोटियर्स को।
और वो तो आप भी कूट कूट कर भरा है।
हाँ, बहुत इंटरेस्ट था तो ऑब्वियसली, तो समहाउ वो लोग बहुत सारे ऐसे 5-6 यू नो रोबोटियर्स तक ढूंढे एंड उसमें मैं भी था एंड वो मेरे तक भी रीच किए एंड उन्होंने मुझे इनवाइट किया उनके टीम में ज्वाइन करने के लिए एज अ आरसी कार, यू नो आरसी कार के सेटअप में ज्वाइन करने के लिए मुझे ज्वाइन किया, मतलब टीम में ज्वाइन करवाया।
और फिर
एंड आरसी कार का कुछ नॉलेज था नहीं।
Okay.
पहली बार आरसी कार था एंड पहली बार हम आरसी कार के बारे में जाने एंड जब उसको बनाने की नौबत आए पता चला कि आरसी कार पूरा बनाने के लिए कम से कम 50,000 रुपीज़ का खर्चा होता है, तो वो भी हमने ड्रॉप कर लिया।
फिर
फिर टीम अलग अलग हमारी डिपार्टमेंट थी, तो एक और डिपार्टमेंट था जहाँ पे एक वार रोबोट बन रहा था। तो वो लोग वार रोबोट जब बन गया हमारा, तो उन्होंने बोला कि चलो बनाया है, इतना टीम बना है, चलो चलते हैं कंपटीशन के लिए। तो हम लोग चले निकल पड़े आईआईटी मद्रास के लिए।
ओके।
एंड शायद उससे पहले हमारी टीम की इतनी इंटरेक्शन नहीं हुई थी। एंड जब हम लाइक आईआईटी मद्रास के लिए स्टेशन पहुंचे, तो हमारे साथ साथ हम सब मिले, दूसरी या तीसरी बार सब मिल रहे थे एक दूसरे को। एंड उस टाइम पे हमारे पेरेंट्स भी हमारे साथ थे। तो हमारे पेरेंट्स ने उस टाइम पे हमारे पेरेंट्स ने बोला कि ये लोग कुछ नहीं करेंगे, जाके सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पैसा वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं।
और ये भी बोला होगा कि मतलब जनरली मुझे और हम सबको, आई थिंक हम सब यंगस्टर्स को बोला जाता है कि क्या कर रहे हो, किस फील्ड में आ गए हो।
हाँ, मुझे भी वही बोला गया था, क्या है, कुछ नहीं, खाली पीले टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं है।
ये चीज अफेक्ट नहीं हुई?
नहीं, कभी अफेक्ट नहीं हुआ। ये सब ये चीज हमेशा कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलता रहता है। कोई ना कोई सीनियर्स जो बोलते रहते हैं क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं है करके। बट हमारा गोल फिक्स था एंड हमें वो एक ही तरीका होता है इन सबको यू नो टैकल करने का, ये सारे जो भी लाइंस होते हैं कि अगर कोई भी कुछ भी बोल रहा है तो उसको रिटर्न में रिप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है। आप जीत के दिखाओ, आप वो अचीव करके दिखा दो, तो वही उनके लिए आंसर है। तो मेरे लिए भी वही था। तो हमने भी इतना कुछ लिया नहीं, वहाँ पे भी हम थोड़े हंसी मजाक में ले लिए एंड इस तरह हमने फिर भी ट्रेन चढ़ लिया आईआईटी मद्रास के लिए।
ओके, तो यहाँ से सफर शुरू होता है आईआईटी मद्रास का।
जी हाँ, तो आईआईटी मद्रास निकल लिए एंड पहला दिन आईआईटी मद्रास पहुँचे, उस दिन कुछ था नहीं एंड हम लोग वेट कर रहे थे रूम्स मिलने का। एंड रूम्स मिला एंड रात को रूम्स मिला, हमने रोबोट्स अपना रेडी किया रात भर। एंड नेक्स्ट डे सुबह हम लोग अपना पहला दिन पहला कंपटीशन खेलने के लिए उतर पड़े एरेना में। और जैसे एरेना पहुंचे, पता चला कि एक्चुअली पता हमें पहले से था, बट हमने अपने रोबोट का वेट मेजर नहीं किया था। सो इवेंट था 40 kg एंड हमने लेके गए थे 44 kg।
ओह माय गॉड।
सो फिर वहाँ पे हमने 4 kg कैसे कम करे करके हमने क्या किया, हमने अपने रोबोट का टॉप प्लेट निकाल दिया और साइड से ऐसे ही पीसेस कट करने लगे वेट कम करने के लिए। एंड वेट कम करके हमने संभव अपने रोबोट को एरेना में उतार लिया खेलने के लिए। एंड फाइनली हाँ, रोबोट तो उतर गया। इसके बाद और भी मजे आने वाला है। सो रोबोट तो उतर गया, बट जैसे हम खेले एंड हमारा रोबोट अच्छा चल भी रहा था एंड हमने 2 बार उनको पिन किया एंड बहुत चांसेस था हमारा जीतने का। एंड उसी दौरान हमारे साथ एक बहुत अनोखी दुर्घटना घट गई।
अनोखी दुर्घटना जैसे कि
उस टाइम पे हमें हमारा एजुकेशन की चीज़ याद आया, जहाँ पे हमने हमारा जो बैटरी हमने सप्लाई दिया था हमारे रिमोट को, उसने रिमोट के स्विचेस जला दिए।
ओह माय गॉड। और फिर
हमारा रोबोट चलना बंद हो गया। एंड टेक्निकली अगर रोबोट आपका नहीं चल रहा है तो आप डिस्क्वालीफाई करते हो। इवन दो हमने जीतने के चांसेस थे, बट स्टिल हम हार गए।
आप लोग हार गए?
जी हाँ, हार तो गए, बट अब क्या कर सकते हैं, लाइक हो गया मिस्टेक। हमें इतना लाइक हम सब नए थे इस फील्ड में, तो फिर हम वहाँ पे दूसरे सीनियर्स जो भी अदर टीम्स थे उनके साथ थोड़ा बहुत इंटरेक्ट किए। एंड सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट इवेंट ये था कि वो पहला दिन था रोबोटिक्स का, पहला दिन था एंड हमने नेक्स्ट 3 दिन के हिसाब से ट्रेन टिकट बुक नहीं किया था क्योंकि हमने सोचा था हम जीतेंगे।
तो पहले तुम जीत की मंशा ही लेकर उतरे थे, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया।
एंड फिर नेक्स्ट 2 डेज जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारी टीम इतना इंटरेक्ट नहीं की थी एक दूसरे से ड्यूरिंग जब हम रोबोट्स बना रहे थे, तो वो 2 डेज कुछ था नहीं काम। तो हमने एक दूसरे को जाने अच्छे से लाइक बात बात किए, थोड़े टाइम पास किए, कुछ काम नहीं था, बात करते थे, खाना खाते थे, सोते थे और कुछ काम नहीं था 2-3 दिन। एंड समहाउ फिर आईआईटी मद्रास से वापस घर आ गए।
आईआईटी मद्रास से अब वापस घर आ गए। तो कहानी यही नहीं रुकने वाली है दोस्तों, इसके आगे भी और भी सफ़र जारी है। इसके बाद क्या होता है, इससे जुड़े रहने के लिए हम आपको इसके बाद की जो कहानी है वो नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। इसलिए तब तक सुनते रहिए मुंबई की गलियों से सोनाली के साथ। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मुंबई की गलियों से इस शो में। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि विश्वारंजन जो है वो आईआईटी मद्रास के कंपटीशन में हार चुके थे। अब इस हार के बाद उन्होंने अपना सफर कैसे जारी रखा, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबान से। तो विश्वा, आगे क्या हुआ?
तो आईआईटी मद्रास हारने के बाद हम लोग वापस आए एंड उसके बाद हम लोग एक और कंपटीशन में गए जो था आईआईटी भुवनेश्वर अपने उड़ीसा में। सो आईआईटी भुवनेश्वर हम गए एंड इस बार हमने ओवरवेट की जगह अंडरवेट रोबोट बनाया।
फिर गलती
हाँ फिर से गलती की एंड हमने वेट मैनेज करने के लिए कोई भी लोहा पत्थर जो है सब अंदर डाल दिया उसका वेट मैनेज करने के लिए। और फिर इस तरह हमने वो इवेंट भी हमने खेला एंड इस बार कोई गलती नहीं हुई, सब हमने अच्छे से
अनफॉर्चुनेटली
इस बार कोई गलती नहीं हुई, सब हमने इस बार अच्छे से तैयारी की थी एंड वो इवेंट हमारा वो पहला इवेंट एज अ विन था।
अब जीत गए
जी हाँ, वो हमारा पहला इवेंट था एंड पहला इवेंट हम ऐसे जीते। इवेंट विनिंग प्राइस बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा था, बट पहला विन था तो हमने 2 घंटे तक फोटोशूट करे।
एक सेटिस्फिकेशन मिल गया।
हाँ, हम एरेना छोड़े ही नहीं। कोऑर्डिनेटर्स वेट कर रहे थे हम जाएंगे तो वो पैक करेंगे, लेकिन हम फोटोशूट में बिजी थे एंड जैसे हमने फोटोशूट खत्म किया हम रात को ट्रेन पकड़े वापस आए एंड करीबन आई थिंक हम 4 बजे ऐसे कुछ पहुँचे एंड 2 घंटे बाद हमारा एग्जाम्स था।
किस चीज़ का एग्ज़ाम?
आई थिंक कोई यूनिट टेस्ट था या सेमिस्टर था, मुझे भी याद नहीं है, बट एग्ज़ाम था इतना याद है। और हम लोग चले गए एग्ज़ाम देने के लिए, एग्ज़ाम संभाव निकाल लिए एंड उसके बाद इस तरीके से लाइक हमारी कंटिन्यू हुई जर्नी विनिंग एंड लॉसेस की इवेंट्स में एंड लेकिन हम लोग अपना जो गोल था वो हम भूले नहीं थे। हमारा गोल था आईआईटी बॉम्बे जीतना एंड उसको फोकस रख के अपने सारे स्टेप्स लेना स्टार्ट किए एंड हमने अपना पहला रोबोट बनाया बड़ा वाला जो कि थोड़ा महंगा वाला बनाया एंड वो आईआईटी बॉम्बे के लिए बना रहे थे एंड 1 लाख रुपए का रोबोट था एंड
अमाउंट वाज बिग।
हाँ, बहुत बड़ा अमाउंट था एंड सबने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन किए थे, मैनेज किए थे समहाउ एंड वो 4th ईयर हो गया था तब। ठीक है, 3rd ईयर से 4th ईयर, 4th ईयर हो गए। राज हमारे जो सीनियर थे वो पास आउट हो चुके थे, वो समहाउ कुछ प्रिपेयर कर रहे थे एंड हम लोग रोबोट्स बनाना लाइक वो हमारा जो रोबोट था वाइपर, उसको नाम
रोबोट का नाम वाइपर था।
हाँ जी, वाइपर हम WWE फैन थे। सो रैंडी ऑर्टन हमारे उस टाइम पे थोड़ा फेवरेट थे तो उसको एज अ वाइपर बोला जाता है। सो फ्रॉम देयर वी केप्ट द नेम वाइपर। तो वाइपर हमने दिया था एंड बट उस दौरान थोड़ा बहुत टीम में अनबन चल रही थी एंड हमारे एक टीम मेंबर जिसके पास रोबोट था उन्होंने वो अनबन की वजह से रोबोट जो है अपने घर पे अपने रूम में छुपा के रख लिए थे।
आपका रोबोट घर में छुपा के रख दिया था?
जी हाँ, छुपा के रख लिए थे एंड हम कुछ कर भी नहीं सकते थे उस टाइम पे क्योंकि वो हमारा एक टीम का इम्पोर्टेंट मेंबर था एंड मेरे जो सीनियर्स को वो सीनियर थे उनको बहुत झगड़ा वगड़ा चल रहा था एंड मैं भी कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि वो मेरे एक्चुअली प्रोजेक्ट पार्टनर था। सो मेरा करियर दाव पे था एंड समहाउ मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था एक्चुअली कुछ क्या करना है क्या नहीं करके, क्योंकि मेरा बीटेक करियर दाव पे, अगर कुछ हो गया अनबन हुआ तो मेरा बीटेक करियर दाव ख़राब हो जाएगा। तो मैं भी कुछ कर नहीं पा रहा था एंड बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन था, लाइक बहुत प्रेशर में थे कि क्या करें क्या नहीं एंड ऐसा था सिचुएशन।
विश्वा जो थे उनके जो टीम मेंबर थे उनके रोबोट को उन्होंने एक रूम में छुपा कर रख दिया था। अब विश्वा के पास 2 रास्ते थे, या तो वह हार मानकर यहां से वापस चला जाए या फिर अपने रोबोट को फिर से हासिल करे। अब विश्वा ने आगे किस रास्ते को चुना ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में। आप सुन रहे हैं मुंबई की गलियों से सनाली के साथ। दोस्तों, मुंबई की गलियों से इस पॉडकास्ट में आप सुन रहे थे कि बिश्वा की कहानी, जहां उन्होंने बताया कि बिश्वा का रोबोट उन्हीं की टीम मेंबर ने छुपा के रखा था। अब उन्होंने उसे कैसे निकाला, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबान से। तो बिश्वा आगे क्या किया?
चोरी किया। और कोई ऑप्शन नहीं था। हाँ, तो हमने
चोरी करने दिया।
नहीं, इतना आसान तो था नहीं। हाँ। चोरी करना था, प्लान करनी थी,
प्लानिंग तो, की प्रॉपर।
हाँ, प्रॉपर, एकदम प्रॉपर। बताते हैं
okay.
जल्दी किया है।
ठीक है,
सो उसके बाद हम लोगों ने हम लोग बात कर रहे थे एक दूसरे के साथ, जो हमारा टीम मेंबर था उसके अलावा बाकी सब, कि कैसे हम एक हमारे रोबोट को बाहर निकालें। हमें पहला टारगेट वही था कि हमें उसको बाहर निकालना है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पैसा खर्च हो चुका था। तो प्लान चल रही थी, एंड साथ में हम लोग ये भी सोच रहे थे कि मेरा प्रोजेक्ट अफेक्ट ना हो। वो भी इम्पोर्टेंट था हमारे लिए। एंड समहाउ हम लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट किया VGTI के लिए। सो VGTI के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे, जाना है करके, एंड हमारा रोबोट जो है बना IIT बॉम्बे के लिए था, बट हमने टारगेट प्रायोरिटी सेट किया फॉर VGTI मुंबई। एंड उससे पहले एक और इवेंट था, किट भुवनेश्वर, एंड वो इवेंट हमारे लिए जीतना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था।
क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट था?
क्योंकि हमारे पास और पैसे नहीं थे, एंड उस इवेंट से हमें एक बहुत ही अच्छी रकम मिलने वाली थी, एंड उस रकम से हम आगे कुछ और कर पाएंगे, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। सो इसलिए एक्चुअली वो सिर्फ उतना ही नहीं, एक्चुअली वो हमारे मुंबई का जर्नी को भी मैच करने वाला था, मेकअप करने वाला था। सो इसलिए वो रकम हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी, एंड उसके लिए हमने दो रोबोट्स बनाए थे जीतने के लिए, एंड हम लोग वहाँ पे फर्स्ट सेकंड दोनों जीतेंगे करके ऐसा प्लान करके हम लोग वहाँ पहुँचे थे।
ओके।
तो मैं और राज, हम दोनों ही गए थे, एंड हमारा जो एक और मेंबर था वो भी एक दिन बाद आया वहाँ पे। ओके। एंड हम लोगों ने प्लान हमारी बहुत बढ़िया थी, ठीक है, टीम अनबन थी, बट हमारा गोल, सबका गोल एक ही था, IIT बॉम्बे जीतना। सो इवन दो हमारी टीम जो है, टीममेट जो है वो हमारी दोस्त, मतलब जो भी अनबन था, इवन दो उसके बावजूद वो हमारे साथ जुड़े रहे एंड हमारे साथ टीम में खेलने के लिए आए। सो किट भुवनेश्वर इवेंट था, वहाँ पे हम गए, एंड अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे भी एक हमारे साथ सिचुएशन हो गया।
क्या? हमेशा ट्रेजिडी होती है तुम्हारे साथ, हाँ, हर वक्त।
हाँ, शायद भगवान की कृपा है।
ये भगवान की कृपा मुझ पर भी बहुत है।
तो कुछ ना कुछ होके हमारे साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। तो वहाँ पे एक नेशनल टीम आ गई अनफॉर्चुनेटली, एंड वो क्या बोलते हैं, शॉकिंग था, क्योंकि हमें पता ही नहीं था। हम रेडी थे आए फर्स्ट सेकंड जीतने के लिए, एंड रिवील होता है कि एक नेशनल टीम आई है वहाँ पे खेलने के लिए, एंड हमें लगा कि कदम फर्स्ट नहीं मिलेगा, शायद सेकंड मिल सकता है, वो हमारा प्रायोरिटी हो गया, सेकंड ले सकेंगे करके। एंड समहाउ हम लोग खेले और एक रोबोट को उन्होंने हरा दिया था हमारा।
आपका एक रोबोट हार चुका था
एंड सिर्फ एक ही रोबोट बचा था, एंड फिर से क्वार्टर फाइनल मैच उन्हीं के साथ हो गया।
ओ गॉड। फिर
हमें लगा कि अगर सॉरी नॉट क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल मैच, सॉरी, सो सेमीफाइनल मैच था, अगर वो हार गए तो कदम, और तो जीतने का चांस नहीं, जीतेंगे तो फर्स्ट या फिर सेकंड,
मतलब अब हारो या जीतो वाला।
जी हाँ। तो बट हमें वहाँ पे एक गेम खेलना था, तो हमने क्या किया, सीनियरिटी का रूल्स वहाँ पे अप्लाई करवा दिया।
अच्छा।
और इस तरीके से क्या हुआ, हमें वो पता नहीं था कि वो बुमेरैंग होके हमारे पे भी लगेगा करके। तो हमारे दोनों ड्राइवर्स जो थे, ओपोनेंट टीम के एंड हमारे दोनों जो ड्राइवर्स थे, वो दोनों सीनियर्स थे, और दोनों को बाहर निकाला गया है खेलने से।
तो अब सीनियर्स आउट हो चुके हैं, तो फिर अब इस सिचुएशन में क्या किया?
उस टाइम पे मुझे एज ए कंट्रोलर चलाना पड़ा। सीरियसली आपको अभी हंसी आ रही है, उस टाइम पे मुझे बहुत प्रेशर था।
मैं समझ सक रही हूँ कि कैसे किया।
मैं टोटली, मैं रोबोटिक्स में इंटरेस्ट था, बट मैंने ड्रोन एक ही बार चलाया, तो उसके बाद मैंने टोटली टच नहीं था किसी रोबोटिक्स को कंट्रोल करने में, रोबोट्स। एंड मैं उस टाइम पे रिमोट पकड़ रहा था, सेमीफाइनल मैच, फुल प्रेशर में हूँ कि अदर हार गया तो गए हमारे पैसे, इवेंट कैसे खेलेंगे, आगे कैसे जाएंगे सब, एंड उसको जीतना
तुमको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो तुमको पता ही नहीं है कि इसके आगे करना क्या होता है।
सिर्फ इतने में नहीं था, ऑपोनेंट टीम का जो ड्राइवर था वो एक्सपीरियंस था. मैं पहली बार चला रहा हूँ, वो एक्सपीरियंस था. एंड उनके पास यू नो अच्छा रोबोट था जो हमें हरा सकता था. ऑलरेडी एक रोबोट हरा चुका था हमारा ही, एंड ये वाला भी लाइक जीतने के लिए कोई रेडी नहीं था. तो हम गए, लगा कुछ तो होगा. एंड समहाउ शायद हमारा लाइक भगवान की कृपा थी उस टाइम पे, ये हमारा लक अच्छा था. और समहाउ हम लोग वो मैच जीत गए. इवन तो वो डिस्क्वालीफाई हुए बट हम वो मैच जीत गए
तुम्हारी वजह से.
पता नहीं.
तुमने एक सीनियर को हराया, कैन यू इमेजिन.
हाँ, वो सीनियर तो नहीं था, वो मेरे एज का ही था बट एक्सपीरियंस ड्राइवर था, बट उसको हराए. हाँ, सीनियर टीम थी.
एग्जैक्टली.
ये पॉइंट सही है, सीनियर टीम थी एंड हराए. एंड उसके रिएक्शन में वो लोग आके यू नो भाग के मेरे पास आ गए थे. एंड मुझे लगा कि कुछ यू नो हो जाएगा करके, बट कोऑर्डिनेटर सडनली आ गए एंड उन्होंने वहाँ पे कुछ भी होने से रोक लिया. बट वहाँ पे हीट ऑफ द मोमेंट इतना कुछ कभी कभी हो जाता है कि वहाँ पे थोड़ी वार्निंग भी आ गई. एंड हमारा एंड वो हमारे एक रोबोट, हमारे जो बड़ा वाला रोबोट था उसके बारे में वो जानते थे. एंड उन्होंने उसमें थोड़ा बहुत डरा दिए कि यू नो यहाँ पे नहीं तो आगे देख लेंगे करके.
अच्छा.
वैसा वाला था. बट हम लोग उनके साथ अच्छी रिलेशन थी, थोड़ा बहुत शांत होने के बाद बात किए एंड उनको बोले कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. फिर वो मैटर यू नो समहाउ हमने संभाल लिया और अच्छी रिलेशन थी तो वो उसके भरोसे रह गए. एंड फिर हम लोग फाइनल जीते, फर्स्ट मिला,
विक्ट्री
फाइनली फर्स्ट मिला फिर से. बट इतनी मेहनत लाइक चलो एक प्राइस ही सही, फर्स्ट सेकंड नहीं मिला, फर्स्ट तो मिला, फर्स्ट मिला. एंड फिर हम लोग यू नो वापस आ गए अपना VGTI निकलने के लिए. और VGTI के लिए हम अपना वाइपर रोबोट फाइनली यू नो घर से बाहर निकला.
काय के लिए?
VGTI खेलने के लिए. ओके. एंड वो हमारे लिए लाइक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था. एंड
के लिए और आपकी पूरी टीम के लिए
ओब्वियसली. मैं और मेरी टीम के लिए पूरी. तो समहाउ यू नो हमने क्या किया था कि उस टाइम पे मैं, राज और प्रत्युषम तीनों ने प्लान ले से ही, हमें पता था रोबोट्स यू नो हमें जाना ही है वो इवेंट करके. तो हमने अपना ट्रेन टिकट्स पहले से बुक कर लिया था एंड वो कन्फर्म था. एंड जो हमारा जो एक और जो मेंबर था वो लास्ट मोमेंट नेक मोमेंट में बुक किए, फ्लाइट बुक किए जाने के लिए. एंड वो सब हमने डिवाइड किया सामान, आधा वो लेंगे आधा वो हम लेंगे. बट अनफॉर्चुनेटली पहली बार हम लोग में से भी कोई फ्लाइट में गया नहीं था, वो भी पहली बार जा रहे थे. बाद में हमें वेट के रेस्ट्रिक्शन के बारे में पता चला. तो उन्होंने क्या किया लास्ट मोमेंट में, जस्ट लाइक मुझे 6 बजे का ट्रेन पकड़ना है एंड हम लोग 5 बजे, हमने प्लान किया था कि 5 बजे का ट्रेन पकड़ना था हमें. एंड उस मोमेंट पे हमारे रोबोट्स पैक नहीं हुए थे और उन्होंने और रोबोट्स लाके हमें यू नो थमा दिए, पार्ट्स रोबोट के पार्ट्स आके थमा दिए. और उस मोमेंट में राज भाई वाज लाइक गए, अब तो जाना भी मुश्किल था. बट मुझे पता था कि मुझे एनी हाउ 6 बजे का, 5 बजे का ट्रेन मिस हो चुका है, 6 बजे का ट्रेन तो मैं एनी हाउ पकड़ना ही है क्योंकि उसके बाद मुंबई जाने का चांस तो गया. तो फिर मैंने तुरंत पैक किया, उन्होंने मेरा सब देखे, राज और प्रत्युष भी जल्दी जल्दी पैक करने की कोशिश की. एंड हम तीनों 80 किलो का सामान लेके निकल पड़े यू नो स्टेशन के लिए. स्टेशन से हम लोग इतना सारा सामान, 8 बैग्स 80 किलो स्टेशन के पीछे से आके प्लेटफॉर्म चढ़ के, ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी और हमने सामान अंदर फेंक के यू नो ट्रेन चढ़ लिए.
ओके फाइनली.
एंड उसी ट्रेन में मेरा एक्चुअली छोटा भाई आ रहा था भुवनेश्वर से, तो मेरे पापा भी वहीं स्टेशन में थे. उन्होंने देखा तो नहीं कुछ भी बट डांट जरूर पड़ी क्योंकि हम लोग नेक मोमेंट में चढ़े क्योंकि वो हमें मिल भी नहीं पाए स्टेशन पे. तो डांट पड़ी, फ़ोन पे कॉल हुआ, मैंने टाटा भाई भी किया ट्रेन से. तो बाद में डांट पड़ी एंड हम लोग VGTI पहुँच गए. जैसे VGTI पहुँचे एंड हमारा वहाँ पे पहला मैच फिर से था, हमारा पहला मैच. एंड हमारा रोबोट टेस्टिंग के टाइम बहुत बढ़िया चल रहा था बट एरेना में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ. इवन दो हम वहाँ पे भी यू नो जीतने के चांसेस थे बट हमारा रोबोट का एक व्हील चल नहीं रहा था एंड जिसकी वजह से रूल्स के अकॉर्डिंग फिर से हम लोग हार गए.
फिर से एक बार तुम और तुम्हारी टीम हार गई.
हाँ, फिर से हम लोग हार गए. एंड उसके बाद हम लोग और कोई ऑप्शन था नहीं, हम लोग IIT Bombay तो चांसेस नहीं था जाने का वहाँ से. सबको टीम पूरे होल इंडिया को पता चल गया एक वाइपर रोबोट के बारे में उस इवेंट के बाद। एंड जब हम रिटर्न आ रहे थे हमारा जो सक्सेस जो गोल था वो था वाइपर को चोरी करने का, वो हमने कर लिया क्योंकि वाइपर हमारे हाथ में था और हमने समहाउ वहाँ से ट्रेन पकड़ के निकल लिए वापस बरमपुर के लिए, उड़ीसा के लिए। एंड वाइपर हमने जो हमारा गोल था वाइपर को हासिल करना वो हमने कर लिया, इवन दो हम इवेंट हार गए थे। रिटर्न आने के दौरान हमारा वहाँ पे जो गोल था वो हमारा ओबियसली था आईआईटी बॉम्बे, एंड उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल गया क्योंकि हमारा रोबोट हमारे हाथ में आ चुका था। एंड देन फाइनली जाके हमने अपना टीम का नाम रिवील किया होल कंट्री को, इट्स विजन बॉट्स।
ओके, विजन बॉट्स। दोस्तों जब बिश्वा की विजन बॉट्स टीम हार चुकी थी तब उन्होंने आईआईटी बॉम्बे का सफर इस हार के बाद कैसे जारी रखा ये जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। आप सुन रहे हैं मुंबई की गलियों से सोनाली के साथ। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं मुंबई की गलियों से सोनाली के साथ। दोस्तों आपने पिछले एपिसोड में सुना था कि बिश्वा की विजन बॉट्स टीम हार चुकी थी, अब आगे क्या हुआ आइए जानते हैं उन्हीं की जुबान से। तो आगे क्या हुआ बिश्वा?
सो वंस विजन बॉट्स यू नो हार चुकी थी एंड हमारा टीम बन चुका था, लेकिन हमारा बहुत यू नो कॉन्फिडेंस यू नो हो गया था एंड हम लोग उसके राइट कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो चुका था एंड हम लोग कंटिन्यूस इवेंट्स जाना स्टार्ट कर दिए उसके बाद, क्योंकि हमारा गोल जो था वो था आईआईटी बॉम्बे जीतना एंड उसके बाद एंड उसको हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत ज़रूरत थी। तो हम लोग कंटिन्यूस सारे इवेंट्स गए, सब कुछ दाव पे लगा लिया, लाइक पढ़ाई वढ़ाई तो नहीं कर रहे थे, इवेंट्स जा रहे थे, पैसे लगा दिए, टाइम सब स्पेंड कर दिया एंड कंटिन्यूस सारे इवेंट्स गए, बहुत सारे इवेंट्स जीते, बहुत कम हारे। एंड फिर जाके यू नो मेरा फोर्थ ईयर ख़त्म हो गया इस दौरान एंड मुझे जॉब के लिए जाना पड़ा बाहर एंड फाइनली मैं जॉब के लिए महाराष्ट्र आ गया जॉब के लिए। और बट मैंने टीम के लिए जॉब करने के लिए डिसीजन लिया सो दैट आई कैन गिव फंड टू माय टीम, बट राज जो मेरे सीनियर थे उन्होंने सैक्रिफाइस किया, उन्होंने जॉब ना करने का डिसीजन लिया टीम के लिए और वो कंटिन्यू करना चाहते थे ये जर्नी, यू नो आईआईटी बॉम्बे जीतना ही हम सबका गोल था, उनके लिए वो गोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गया। और फिर हम लोग यू नो पहला जो वाइपर हमारा जो चुरा तो लिए लेकिन कुछ यूज़ नहीं हो पाया।
क्यों?
क्योंकि वो अनफॉर्चुनेटली लाइक वो रोबोट इतना लाइक उतने लेवल का नहीं था जीतने के लिए, सो हमने उसको ड्रॉप करने का प्लान किया। हमने सोचा कि छोटे से स्टार्ट करते हैं फिर से, थोड़ा यू नो
फिर से शुरू करते हैं,
विजन बॉट्स का जर्नी शुरू होता है उससे। सो हमने एक 30 kg रोबोट बनाया सिकंदर करके और हम लोग उसका उस हाँ ये आया बिकॉज ऑफ सलमान खान मूवी रेस 3।
सीरियसली?
यस, रेस 3 सलमान खान सिकंदर उसका नाम था तो इसलिए हमने अपने रोबोट का नाम सिकंदर दे दिए। सो इस तरह हमने एसनिस्ट हैदराबाद एक इवेंट गए एंड वहाँ पे इवेंट कैटेगरी था 60 kg का एंड हम लोग 30 kg का रोबोट लेके गए थे, स्टैंडर्ड अच्छा रोबोट बनाए थे,
मतलब इस बार कोई गलती नहीं हुई।
गलती तो हुई है ना, 60 kg के इवेंट में 30 kg रोबोट लेके गए
यार, फिर एक बार
नहीं, एक्चुअली ये इंटेंशनल था। ये मिस्टेक नहीं था, ये इंटेंशनल था,
जानबूझ के की गई थी।
जी हाँ, तो हम लोग लेके गए और एज यूजुअल राज में और प्रत्युष हम तीन गए थे इस बार। प्रत्युष थोड़ा बहुत टाइम निकाल के अपने लिए टीम को थोड़ा इवेंट के लिए आया, प्लीज डोंट माइंड प्रत्युष।
प्रत्युष अगर आप ये सुन रहे हैं तो प्लीज डोंट माइंड।
ओके, तो इवेंट के लिए गए और वो भी एक टफ मैच था। हम लोग क्वार्टर फाइनल या उससे पहले हम लोग हार गए, ओबियसली 30 kg 60 kg के अगेंस्ट लड़ना मुश्किल है हमें। फिर उस टाइम से ना एक हमारा लाइक अलग लक स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे। जैसे कि वाइल्ड कार्ड एंट्री।
ओह,
वाइल्ड कार्ड एंट्री। तब समहाउ वहाँ से हमारा एक वाइल्ड कार्ड एंट्री का लाइक बहुत बढ़िया लक चल रहा था उस टाइम से, चल रहा है अभी तक। तो उस टाइम पे हमें वाइल्ड कार्ड एंट्री चांस मिला एंड वाइल्ड कार्ड एंट्री से सीधा हम गए विनर तक। एंड हम लोग सारे 60 kg रोबोट्स को ऐसे डिफीट किए। लाइक फाइनल मैच में राज चला रहा है एंड बोल रहा है, नो नो नो, इट इज़ नॉट दैट ईजी। उतना कॉन्फिडेंस में हम लोग लाइक रोबोट चला रहे हैं सीरियसली लाइक। और हम फाइनली जीते। जजेस देख रहे हैं ये, जब ये डायलॉग मैं रहा, मैं भी उसके बगल में खड़ा हूँ, मतलब चल क्या रहा है। जजेस भी ऐसे मुँह उठा के देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं करके। इट्स नॉट दैट ईजी करके ओपोनेंट को बोल के हमने वहाँ पे यू नो फाइनल्स जीते एंड विन फिर से हुए बहुत लाइक होने के बाद। एंड फिर मैं वापस अपने काम में वापस आ गया एंड ये लोग वापस अपने यू नो बरमपुर चले गए। और फिर हम लोगों का जो वाइपर ऑलरेडी जा चुका था, तो अभी अभी हम लोगों का प्लान था एक और वाइपर बनाने का। एंड विजय जो एसनेस्ट हैदराबाद में एक बढ़िया सा इंसिडेंट ये हुआ, अगर मैंने आपको बताया था किट में एक एक्सपीरियंस ड्राइवर का मेरे ओपोनेंट के तौर पे
जी।
सो वो भी वहाँ पे आए थे एज अ पार्टिसिपेंट दूसरे रोबोटिक्स के कॉम्पिटिशन के लिए।
क्या बात है।
सो वो लोग वहाँ पे भी तीन मेंबर्स थे, वहाँ पे भी धनंजय, प्रीतम एंड सुशील, ये तीन हैं। सो वो लोग भी आए एंड वो लोग हमारे रोबोट्स मैच देखने के लिए आए थे एंड उन्होंने भी वही देखा। आई थिंक उन्होंने कुछ देखा लाइक कि एक कैसे एक 30 kg कैटेगरी के रोबोट लेके आके एक टीम जीत रही है 60 kg के अगेंस्ट। एंड ये टीम एंड उन्होंने वो हमें पहले से ही जानते थे, राइवलरी टीम थी सबसे बड़ी उड़ीसा में। वो टीम और हमारी टीम की सबसे बड़ी राइवलरी टीम थी जो भी रोबो रेस ऐसे टाइप के कॉम्पिटिशन में। तो उन्होंने वो देखा कि हम लोग रोबोटिक्स रोबोवार जो है वो छोड़े नहीं थे एंड हम लोग कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहे थे इवन दो हारने के बाद, लॉसेस के बाद भी। उन्होंने वो चीज़ देखा, उनको शायद कुछ महसूस हुआ, कुछ फील हुआ
कि डेडिकेशन उन्हें नज़र आई
शायद, क्या पता, हमने तो अभी तक पूछा नहीं है। सो वो लोग अप्रोच किए टीम को ज्वाइन करने के लिए।
क्या बात है।
एंड फाइनली हमारे टीम तीन मेंबर से यू नो एक्सटेंड हो गए, काफ़ी मेंबर्स थे, नंबर्स अभी बाद में बताएंगे हम। सो वो लोग जुड़े हमारे साथ, उनकी एक जूनियर्स की टीम थी उनको भी हमारे साथ जोड़े। और फिर हमने अपना वाइपर का सेकंड रोबोट बनाया, सिर्फ स्लाइड चेंज किया, VIPER की जगह VYPER कर दिया। पता नहीं धनंजय इसके लिए बोला कि वाइपर ऐसा कुछ पता नहीं क्या था लॉजिक, बट नाम दिए इसको, सेम नाम फील होना चाहिए, दैट वाज द मेन इंपॉर्टेंट गोल। तो हमने उस हिसाब से हमारा सेकेंड रोबोट बना वाइपर, आई थिंक इट वॉज ऑफ 2.5 lakhs और समथिंग लाइक, और थोड़ा महंगा, थोड़ा 2.5 lakh का ऐसा कुछ रोबोट बनाया। एंड टारगेट था IIT बॉम्बे, लेकिन फिर हर बार हर साल की तरह हम लोग डिसाइड किए IIT बॉम्बे नहीं, VGTI चलते हैं करके। तो फिर से हम लोग आए VGTI मुंबई।
ओके।
और VGTI मुंबई आए, बहुत स्मूथ इस बार इवेंट रहा, स्ट्रगल इतना कुछ था नहीं। लाइक हमने बहुत अच्छे से प्लान करके आए थे, दो रोबोट्स लेके आए थे, सिकंदर को हमने सेक्रीफाइस किया सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल में, उसको खिलाए नहीं क्योंकि हमारे पास थोड़ा कंपोनेंट्स का कमी था। तो वाइपर को प्रायोरिटी दिए हमने कंपोनेंट्स के मामले में। सो वाइपर को कंटिन्यू करवा के यू नो फर्स्ट मैच हमने IIT बॉम्बे विनिंग टीम को हराया।
क्या बात है।
ओके। एंड विनिंग टीम जो थी उसको फर्स्ट मैच में हराया, अलग मजा था, वो अलग बात है
क्योंकि फाइनली किसी को हरा रहे हैं अब।
ओके। सो वो नेशनल लेवल पे,
नेशनल लेवल पे ये
वो भी 60 kg कैटेगरी जो इम्पोर्टेंट था इंडिया के लिए। सो वहाँ पे हराए, फिर उसके बाद और भी इजी मैचेस, मतलब अभी लाइक वो मैचेस इजी लग रहे हैं, उस टाइम पे अलग फीलिंग था। फिर उसके बाद जो भी मैचेस थे सब जीते, एट द एंड हम लोग फाइनल पहुँचे। फाइनल हमारी मैच हुई IIT बॉम्बे जो रनर अप थे उनके साथ, फर्स्ट रनर अप, सेकंड प्राइज जो थे उनके साथ हुआ। एंड उसके एक दिन रात पहले बहुत बढ़िया सा घटना हुआ था, वो होल नाइट हम सोए नहीं थे, वो टीम हमारी टीम एक ही रूम में थी एक्चुअली।
अरे बाप रे।
तो वो आके हमारा रोबोट देख रहे थे, हम भी उनका रोबोट देख रहे थे, सब बातें चल रही थी एंड वो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि वो जीतेंगे क्योंकि उनका ऑलवेज रोबोट बहुत अच्छा था कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था एंड हम लोग भी कॉन्फिडेंस थे कि हमारा रोबोट अच्छा खेला है,
कब नहीं है आओ देखते हैं आपका मैदान में।
हाँ तो बट हम दिखाते नहीं थे, अपने मन में रखते थे वहाँ पे बहुत हम बहुत चुपचाप रहते थे, हाँ भैया आप बड़े हो गए कैसे ठीक है। तो ऐसे रहे और फिर जैसे फाइनल मैच हुआ बहुत हीट ऑफ मोमेंट था क्योंकि लाइक बहुत वरीड थे, बहुत कॉन्फिडेंस थे, बहुत नर्वस थे, सब मिक्स वाला फीलिंग्स जो था वैसा था। एंड लाइक जैसे हमारा रोबोट पहला हिट दिया उनके एंड उनका व्हील टूट गया, उस मोमेंट पे लाइक हम मैच हारे नहीं है, वो इवन ओपोनेंट क्विट नहीं किया है, इवन दो एक व्हील टूट गया है क्विट नहीं किया है, बट हमने बैक कर लिया। लाइक वो मोमेंट हमारे लिए बहुत इमोशनल था, राज के आंखों से आंसू आने लग गए, प्रीतम वहाँ पे था वो कॉन्फिडेंस दे रहा है कि लाइक
कोई नहीं
जीते जीते हैं करके। मैं भी बहुत लाइक इमोशनल था, लाइक फाइनली बहुत कुछ हो गया, मैं बैक कर लिया मैं, और इवेंट मैच आई थिंक मैंने कंटिन्यू देखा नहीं, मैं शायद साइड होके देखा क्योंकि लाइक बहुत ये मोमेंट था। एंड फिर उसके बाद और दो हिट्स हुए, उनका मैच उनका बॉट का बैटरी जल के बाहर निकल गया, पूरा एरेना धुआं धुआं हो गया एंड उस हालत में हमने मैच जीता। पागल की तरह हम लोग चिल्ला रहे थे, राज भाई को उठा लिए वहाँ पे, राज भाई लाइक ऐसी ऐसे पोजीशन में उठाए कि राज भाई चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एरेना को वैसा फील हो रहा था वैसा मोमेंट में हम लोग वो जीते। बहुत ज़ोर से चिल्लाए हम लोग, लाइक सबको चिल्लाने ऐसा फील करना चाहिए था कि लाइक विजन बॉट्स कौन है पता चल जाए करके, वैसे जोर से विजन बॉट्स हम लोग चिल्लाए। और यू नो जब प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ स्टेज पे जाके, लाइक इवन उस टाइम पे भी यू नो हम लोग ऐसे हैं कि लाइक जब विनिंग मेडल्स कहीं पे भी जीतना होता है ना, हम लोग अपने जूनियर्स को भेजते हैं, क्यों पता है नहीं। तो राज भी वही कर रहे थे, मेरे को भेज रहे थे, मैंने क्या किया जब मैं जा रहा था मैं उनका हाथ पकड़ लिया, उनको खींच के लेके चला गया इवेंट, बोला आओ एटलीस्ट इतना कुछ किए तो जीतने हैं तो लेके ही जाएंगे मेडल। वहाँ पे गए प्राइज जीते एंड इस तरीके से हमने VGTI जीत गए।
मतलब इतनी जीतोड़ मेहनत के बाद, इतनी हार देखने के बाद फाइनली आप लोग जीत गए और अब यहाँ से IIT बॉम्बे का सफर शुरू होता है।
जी हाँ
ओके। तो दोस्तों फाइनली VGTI मुंबई जीत चुकी थी, अब IIT बॉम्बे का सफर इनका शुरू होने वाला था। अब इस कंपटीशन में आगे क्या हुआ ये जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। आप सुन रहे हैं मुंबई की गलियों से सोनाली के साथ। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मुंबई की गलियों से इस शो में। दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने सुना कि VGTI मुंबई जीत चुकी थी और अब उनका IIT बॉम्बे का सफर शुरू होने वाला था। अब इसके आगे क्या हुआ ये तो बिश्वा ही हमें बताएंगे। तो बिश्वा आगे क्या हुआ?
सो VGTI जीतने के बाद हमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था,
ये टाइप एकदम
हम बहुत लाइक अभी तो लाइक हम सब जीतेंगे करके, बट हमारी रोबोट लाइक हमें पता था कि रोबोट में हमारी क्या फ्लॉज है, तो इसलिए हमने मजबूरी में हमें एक और रोबोट बनाना पड़ा। एंड वो रोबोट भी बहुत ज्यादा खर्चा हुआ,
जैसे कि पिछले बार 2.5 लाख का खर्चा हुआ था और इस बार
एट द एंड ये रोबोट की वजह से 8,90,000 का हमें एक्सपेंस लगा है
सच में? और ये एक्सपेंस को कैसे मैनेज किया?
अब सब अपने अपने पॉकेट मनी से एंड सब अब बाकी कहाँ से आए वो भी हम बताते हैं आपको। सो ये हमारा तीसरा वर्जन था रोबोट का, इसका नाम भी वाइपर ही रखा गया। ओके एंड इसकी जर्नी हमने स्टार्ट की इवेंट विद IIT गुवाहाटी।
ओके
एंड वो टेस्टिंग मैच था हमारे लिए, हमें पता नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं इवेंट के लिए, एंड हम लोग गए एंड वहाँ पे जीत हुई। जी हाँ जीत हुई एंड बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। एंड हमने वहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा एक मूव हुआ जिसका था टोर्नाडो गायरो करके, उसका नाम दिया गया बाद में, तो हमारा डांस मूव था। हम वहाँ से करीबन 3-4 इवेंट कंटिन्यूस जीते नॉन स्टॉप एंड कंटिन्यूस जीते 11 मैचेस हम लोग बिना हारे खेल रहे थे, और 13-0 यह स्ट्रीक उसका था। तो वो कंटिन्यूस जीते, तो जो भी 8,90,000 के लिए जो एक्सपेंस था वो सब विनिंग अमाउंट थे जो उस पर स्पेंड कर रहे थे।
खर्चा निकल गया?
नहीं निकला नहीं है, एक्चुअली अच्छा। वो खर्चे हुए जीतने के बाद, खर्चे हुए जीतने के बाद खर्चे हुए वैसा था। तो इस तरीके से 8,90,000 उस रोबोट पे खर्चे हुए हैं टोटल। एंड जब फिर यू नो हमारा जो टारगेट था, जब हम कंटिन्यूस 3 इवेंट जीत गए, IIT गुवाहाटी, एसनिस्ट एंड देन VIT वेलोर। VIT वेलोर कॉन्ट्रोवर्शियल है, उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा मेरा YouTube चैनल देख लो करके। ओके वो इवेंट जीते एंड देन हम लोग फाइनली, जो हमारा टारगेट था वो था IIT बॉम्बे। सो हम लोग आ गए VGTI और IIT बॉम्बे खेलने के लिए मुंबई। एंड मेरी टोटल होल टीम आई थी 20 मेंबर्स की। ओके सो कंप्लीट 20 मेंबर्स पूरे आए थे IIT बॉम्बे। मतलब इतना कॉन्फिडेंस था हमें कि हम ये कंपटीशन तो जीतेंगे ही।
अब तो भैया आओ चौड़े पे मैदान पे, मतलब
क्योंकि जो 13-0 का जो स्ट्रीक चल रहा था ना, उससे पहले हर एक मैच में हम लोग ऐसे लाइक कोई भी मैच हमारा 1 मिनट से ज़्यादा नहीं चल रहा था। सारे मैच 30 सेकेंड 10 सेकेंड ऐसे हम लोग मैच जीत रहे थे। एक तो रिकॉर्ड है हमारा 3 सेकेंड का भी है। वो वाला मैच भी है। सो उतना कॉन्फिडेंस हो गया था हमारे रोबोट पे, हमारे वेपन जो हमारा स्पेशल वेपन था उस पर इतना प्यार सबका आ गया था, हमारी टीम ओपोनेंट्स टीम का भी। ओके तो कोई भी मैच कोई भी ओपोनेंट आता है लाइक जीतेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सब जीतेंगे ठीक है। सो तो फाइनली हम लोग आए VGTI और IIT बॉम्बे एंड बहुत जीत के कॉन्फिडेंस के साथ आए थे। और VGTI भी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, मैचेस हम जीते, सिकंदर भी लाए थे साथ में,
जो सिकंदर हमारा सलमान वाला
पिछली बार सैक्रिफाइस करवाए थे उसको, इस बार उसको भी खिलवाए। एंड हमेशा एक मेरे साथ एक बढ़िया सी चीज़ होती है, वो है लक ठीक है।
ओके
तो मैं हमेशा जब भी टीम चीट्स उठाने जाता हूँ कि ओपोनेंट टीम कौन होना चाहिए, चीट होता है हमारे यहाँ ठीक है रोबोटिक्स इवेंट में, तो जब भी चीट उठाने जाते हैं ना, मैं हमेशा बढ़िया बढ़िया टीम सिलेक्ट होता है मेरे हाथों, एंड वो एदर जीत के लिए होता है या फिर राइवलरी के लिए होता है, दोनों में से कोई एक वजह से होता है। तो इस ये चीज़ VIT वेलोर में भी हुआ था।
अच्छा
VIT वेलोर में भी पहला मैच हम जीतने के बाद ना, जो भी मैचेस थे वो चीट होने वाला था, तो वहाँ पे भी मैं गया चीट उठाने, राज भाई आए मेरे पीछे, मैंने राज भाई को बोला ए सुन अच्छा ओपोनेंट लेके आना, राज भाई बोले थे, मैंने बोला टेंशन मतलब मैं हूँ ना, उतना कॉन्फिडेंस था ठीक है। तो वहाँ पे बढ़िया बढ़िया टीम्स निकले थे, वो इवेंट भी जीते थे, वहाँ पे हमें बेस्ट डिज़ाइन रोबोट मिला था, यू नो उतना कॉन्फिडेंस के साथ हमारा परफॉर्मेंस हुआ था। फिर हम जब VGTI आए तो वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, सिकंदर का लक अच्छा था, उसको कोई भी 2 मैचेस कंटिन्यूस खेलना नहीं पड़ा, डायरेक्टली सेमीफाइनल खेला बिकॉज ऑफ माई
सिकंदर, सेमीफाइनल में डायरेक्ट,
हाँ उसको सिकंदर डायरेक्ट सेमीफाइनल मिला, सेमीफाइनल मिलके वो फाइनल हार गया, फाइनल हार गया और इट वॉज फाइन हमारे लिए, वाइपर हारा नहीं था तो वो मस्त चल रहा था। एंड सेमीफाइनल भी हम जीते एंड फाइनल हम लोग VGTI फिर से पहुँचे। इस बार ओपोनेंट जो थी फाइनल वाली वो बहुत बढ़िया थी, लेकिन हम लोग भी क्योंकि हम लोग अपना स्टैंडर्ड बढ़ा दिए थे, तो हम लोगों ने भी क्या किया था, हमने एक अलग से एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था विक्टर बीबी करके, वो हमने नया पहली बार थोड़ा महंगा है 80,000 का कुछ है, वो हमने लगाया था क्योंकि हमें IIT बॉम्बे खेलना था करके, तो वो हमने फाइनल मैच में लगाया। एंड हमें पता नहीं था कि उसकी वजह से परफॉर्मेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है रोबोट का, एंड हमारा रोबोट इतना अच्छा परफॉर्मेंस देने लगा कि हमें कंट्रोल हमारे लिए मुश्किल हो गया, एंड वो हम लोग पहली बार वाइपर हारा।
क्या?
सिर्फ हारा नहीं, एक्चुअली वाइपर के मोटर एंड जो विक्टर था दोनों जल गए, एंड हमें वहाँ पे स्ट्रेट हमें वहाँ पे करीबन कुछ 2 लाख के आसपास खर्चा लॉस हुआ, एंड हमारे पास स्पेयर पार्ट्स नहीं थे।
फिर क्या किया?
फिर उसके बाद IIT बॉम्बे प्लान था ही, कंफर्म था प्लान कि हमें जाना ही है करके, एंड हमारी टीम बहुत बिखर गई थी उस दिन, बहुत रोए हैं सब मेंबर्स, लिटरली सब मेंबर्स रोए हैं। वो इवेंट ख़त्म होने के बाद हमें पता था प्राइज़ मनी मिलने वाला है सब ठीक है, मनी तो बाद में मिलता था, प्राइज़ मिलने वाला है, तो मैंने अपनी टीम को भेज दिया क्योंकि मैं वहाँ पे सीन नहीं चाहता था कुछ भी। सो उनको मैंने बोला कि रोबोट लेके चले जाओ, सब चले गए, धनंजय और मैं और एक कौन था, विवेक या विशाल, दोनों में से कोई एक थे, याद नहीं है, सॉरी है. नहीं नहीं, उनके लिए सॉरी बोल रहा हूँ. ओके, सो हम तीन थे एंड हम लोग वेट कर रहे थे प्राइजेस मिलने का. प्राइजेस मिला उस दिन, हमें एक प्राइज और मिलना था. वो मुझे उस दिन जज ने एक स्पेशल प्राइज रिलीज किया था, वो था बेस्ट टीम का अवार्ड.
जजेस ने स्पेशली
एंड वो टीम अनाउंस हो गया था पहले से, सुबह बता दिया गया था कि एक अवार्ड ऐसा है करके. बट मैं पूरा प्लान किया था कि कुछ भी हो ये अवार्ड तो मुझे ही लेके जाना है, मेरे टीम को ही लेके जाना है. एंड मैं पूरा माइंडसेट था एंड मैं इतना कॉन्फिडेंस था कि विनिंग मिलने के बाद ना मैं अपने टीम को बोला रुको एक और अवार्ड बाकी है. इतना कॉन्फिडेंस था मुझे कि वो अवार्ड तो हमारे टीम को ही मिलना है, कुछ भी कर लो. तो इतना कॉन्फिडेंस था एंड जब विनिंग मिला हमारे लिए वो मोमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. हम तीन वहाँ पे ले रहे थे, बाकी सबको पता भी नहीं था. तो हम लिए वो अवार्ड, बेस्ट टीम अवार्ड लेके आए एंड हम लोग वापस आए. और
कैसा लगा था वैसे?
एक्चुअली लाइक पहले बहुत उदास थे क्योंकि हमें लॉस हो गया था ऑलरेडी. बेस्ट टीम, बहुत कॉन्फिडेंस दिया ऑब्वियसली, बट ऑलरेडी एक माइंडसेट में है. आईआईटी बॉम्बे हमारा सपना था
जी,
टीम बनाना तो अलग चीज़ है. वो बना बहुत ही अच्छी चीज़ है हमारे लिए, बट वो हमारा सपना नहीं था. हमारा सपना था आईआईटी बॉम्बे जीतना. तो वो माइंडसेट में था. हम लोग आए, खाना खाए और जब रूम पहुँचे तब मैंने देखा कि टीम सिनेरियो बहुत बिखर गई है, सब रो रहे हैं एंड ऐसे सिनेरियो में. तो उस टाइम पे मैंने पूरे टीम को संभाला, कॉन्फिडेंस दिया कि है चांस है, कुछ तो करेंगे, दो दिन है हमारे पास टाइम आईआईटी बॉम्बे के लिए, कुछ तो करेंगे. समहाउ किसी ने पैसे कहीं से सब मांगे, किसी से हमने दूसरे टीम से अपने टीम से रोबोटिक सॉरी यू नो मोटर मांगा और इस तरह हमने समहाउ मैनेज करके आईआईटी बॉम्बे के लिए पहुँच गए कॉन्फिडेंस लेके. क्योंकि जब वो रात गई ना, नेक्स्ट डे मेरी टीम फुल कॉन्फिडेंट थी क्योंकि बेस्ट टीम अवार्ड मिल चुका था उनको, वो भरोसा था एंड पूरी टीम ने अरेंज कर लिया सब कुछ, एक मोटर एंड सब जो भी खर्चा जो भी था सब अरेंज कर लिया. तो सबको फिर से एक कॉन्फिडेंस मिल गया कि अच्छी टीम है हमारी एंड हम आईआईटी बॉम्बे जीत सकते हैं. आईआईटी बॉम्बे पहुँचे, वहाँ पे हमने रिवील किया एक और रोबोट 15 kg कैटेगरी में, वो था विनस. उसको बहुत सारे हमारे ऑडियंसेस बोलते हैं सेक्सीएस्ट रोबोट करके.
सेक्सीएस्ट रोबोट,
बहुत ही सेक्सी लुक है उसका, बहुत क्यूट दिखता है वो एक्चुअली.
देखना है
जरूर जरूर, आप हमारे चैनल एंड यू नो इंस्टाग्राम चेक कर सकते हैं. ओके, सो वो हमने रिवील किया वहाँ पे 15 kg में. वाइपर अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट मैच हार गए एंड फिर से लाइक जो कॉन्फिडेंस था ना वो इस बार सेकेंड टाइम टूटता है ना कुछ कॉन्फिडेंस, तो लाइक और वापस आना मुश्किल रहता है. तो पूरा कॉन्फिडेंस फिर से गया. वेनस लॉन्च हुआ है, किसी को मूड नहीं है इसको यू नो चलाने के खेलने के लिए क्योंकि वाइपर हार गया करके. इतना मूड ऑफ था कि वाइपर
अगर हार गया, मूड ऑफ हो गया तो फिर आगे कैसे, मतलब
वाइपर जब हार गया तो राज भाई और मैं जाके रूम सो गए. सबसे पहला काम सो गए क्योंकि लाइक ख़त्म था अपने लिए सब कुछ. तो सो गए हम. फिर हम नेक्स्ट डे हमारा मैच था वेनस का, कॉन्फिडेंस लेके आए, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं था लाइक कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं था. वेनस खेलना ही नहीं था अपने लिए, वाइपर ही सब कुछ था. हम कोऑर्डिनेटर्स को जाके पूछे कि भैया वाइल्ड कार्ड हो सकता है क्या, भैया वाइल्ड कार्ड, हम सब सीनियर्स हैं ओके, हम लोग अपने जूनियर्स कोऑर्डिनेटर्स को भैया बुला रहे हैं रिस्पेक्टफुली. तो भैया वाइल्ड कार्ड हो सकता है क्या, सीरियसली लाइक उतने हम्बल हो रहे हैं वहाँ पे जाके ओके वाइल्ड कार्ड मिल सकता है. वो बोले वहाँ पे आईआईटी बॉम्बे का रूल था नो वाइल्ड कार्ड.
ओ गॉड,
नेवर. हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस टाइम पे. ओके, सो वैसे सिचुएशन में फिर एक लाइक क्या बोले ऊपर वाले की मेहरबानी या लक एंड जजेस ने समहाउ डिसाइड किया वाइल्ड कार्ड मैच ऑर्गेनाइज करने का.
क्या बात है, फाइनली.
एंड हम लोग तैयार रहे थे कि हमारा नाम है या नहीं, बट हमारा नाम नहीं था.
क्या?
एंड उसके लिए राज भाई गए जजेस से बात करने के लिए, फाइट किए कि क्यों हमारा टीम नहीं है एंड क्या कौन से बेसिस पे आपको हमने नहीं मिला, दूसरे को टीम को मिला है, उन्होंने वहाँ पे स्कोरिंग का पूरा यू नो पॉइंट्स टेबल स्टार्ट कर दिया, ये है वो है करके
जद्दोजहद उन्होंने शुरू कर दी उसमें बने रहने के लिए।
एंड सिर्फ उतना ही नहीं, वो बहुत इमोशनली लाइक सिचुएशन में थे एंड इतने इमोशनल मोमेंट में उन्होंने चैलेंज कर दिया जज को क्योंकि वो एक रॉयल रंबल मैच था, 4-5 रोबोट्स खेलने वाले हुए मैच सिनेरियो था। तो उन्होंने रॉयल रंबल मैच में चैलेंज किया कि अगर मेरा रोबोट वहाँ पे है एंड एक मिनट के अंदर, एक मिनट तक खड़ा है एंड सामने अगर कोई रोबोट खड़ा होगा ना तो वाइपर क्विट करेगा।
ये क्या बात,
दिस वाज द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर वाइपर। ओके, क्योंकि दो ही हारे हैं ना अभी तक, और तो हारे ही नहीं थे, चैलेंज उस लेवल का हमने यू नो कॉन्फिडेंस मतलब था
जजेस ने मतलब फिर किया।
ऑब्वियसली इतने बड़े चैलेंज को ठुकराना जज के लिए भी बहुत बड़ी मुश्किल बात थी, तो जजेस ने एग्री किया। हमने हमारा रोबोट हॉस्टल छोड़ दिया था क्योंकि हमें पता नहीं थोड़ी ना था होगा करके, भाग के मैं और मेरे जूनियर्स के साथ भाग के गए और वाइपर लेके आए और ऑटो करके लेके आए। एक्चुअली जूनियर्स पता चल गया ना, जूनियर्स को पता चल गया हम लोग भाग रहे हैं रोबोट लाने के लिए, तो वो लोग ऑटो लेके हमारे पीछे आ गए और हम लोग रोबोट लेके वापस आए और हमने अपना रोबोट रेडी करके गए और रॉयल रंबल मैच था, हमने 30 सेकंड्स में दोनों रोबोट्स उड़ा दिए। उतना लाइक एंड उस मोमेंट जो जो चिल्लाए ना, मैंने तो इवन बहुत कुछ लाइंस बोले हैं वो मैं बोल नहीं सकता यहाँ पे। तो बहुत गंदा चिल्लाए, बहुत गंदा शाउट किए, लाइक बता दिए कि कौन है हम लोग करके। एंड देन उसके बाद होल डे रात तक कंटिन्यूस हमारे मैचेस चलते रहे, वाइपर के बाद वेनस, वेनस के बाद वाइपर, वाइपर के बाद वेनस, ऐसे कंटिन्यूस मैचेस चलते रहे और हम कंटिन्यूस जीतते जा रहे हैं, कंटिन्यूस आ रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, जीत रहे हैं, भाग रहे हैं और सब मैचेस एक मिनट दो मिनट, वेनस के मैचेस ही थोड़े लंबे जा रहे थे, वाइपर तो 30 सेकंड में खत्म करके आ रहा था। इस तरीके से हम लोग खत्म करके आए एंड फाइनली जाके दोनों सेमीफाइनल पहुंच गए, सेमीफाइनल शाम को था। जब सेमीफाइनल मैच हुआ तो वाइपर का मैच था इन वर्ल्ड्स बेस्ट रोबोट के अगेंस्ट, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट रोबोट। ओके, एंड इट वाज फ्रॉम ब्राजील।
सच में?
यस, बॉट का नाम है जनरल। ओके, सो उससे पहले भी हमने दूसरे इंटरनेशनल टीम से खेल लिए थे, बट वो बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट रोबोट्स एंड हम उसको बहुत मानते हैं, रिस्पेक्ट, लाइक वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, भूल गया मैं वर्ड। ओके, तो उतना रिस्पेक्ट देते हैं उस रोबोट को। वो उसके अगेंस्ट मैच था, वेनस का भी मैच उसी के अगेंस्ट था, बट वेनस हमारे लाइक इतनी इम्पोर्टेंस नहीं था। सेमीफाइनल जैसे ही हम जीत गए जनरल के अगेंस्ट, बहुत ज़्यादा खुशी थी, लाइक जो सपना लेके आए थे आईआईटी बॉम्बे वो दिखने लगा था, फाइनल
फाइनली आंखों के सामने, बस कुछ ही दूरी पर।
और फिर उसी टाइम पे वेनस का भी मैचेस थे और जैसे ये वाइपर का सेमीफाइनल खत्म हुआ, वेनस का फाइनल था। और मेरा वाइपर थोड़ा डैमेज भी हो चुका था एंड वेनस तब जीता फाइनल, उसका रंबल था वही ब्राज़ील टीम के अगेंस्ट थी, एक और कोई टीम था याद नहीं है, दोनों को उड़ाए, इंडिया का टीम था आई थिंक, दोनों को उड़ाए एंड विनर हुआ, विनर हुआ। मैं मैच नहीं देखा, मैं बैठ कर रोबोट रेडी कर रहा हूँ वाइपर को, क्योंकि वाइपर का फाइनल है करके, मैं भाग के आया मेरे टीम को बुलाने के लिए, लेकिन राज भाई एज यूजुअल जूनियर को धक्का देते हैं प्राइज़ के लिए, उन्होंने मुझे धक्का दे दिया मेडल लेने के लिए। मैं वहाँ चुपचाप बैठ के मेडल ले रहा हूँ इमोशन चेंज करके, फिर जैसे मेडल लेता हूँ भागता हूँ फिर टीम को लेके अपना वाइपर रेडी करने के लिए, और वाइपर हम रेडी करके लेके आते हैं, कंप्लीट नहीं रेडी हो पाता है बट हम रेडी करके लेके आते हैं क्योंकि हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं जजेस को, टाइम का, सबका, एंड उस हिसाब से हम लेके आए एंड बहुत बढ़िया, इंडिया की टीम थी अगेंस्ट एंड हम लोग आईआईटी बॉम्बे हार के।
क्या, इतनी मेहनत, जी तोड़ मेहनत करने के बाद तुम हार गए?
जी हाँ।
और जब, सॉरी बट जब हार गए तब कैसा लगा?
एक्चुअली हमें पता था कि हम हारने वाले हैं,
पहले से पता था,
लाइक इतना नहीं था कि लाइक हमें भरोसा था, एक उम्मीद थी कि नहीं हमारे पास है चांस जीतने का, क्योंकि हमारा रोबोट रेडी नहीं था, पहले मैं बताया मैं समहाउ मैनेज करके रेडी करके लेके आया, लेकिन स्टिल एक वो कॉन्फिडेंस था क्योंकि वाइपर के ऊपर हमारा भरोसा कभी नहीं टूटा था, तो वो 99% कॉन्फिडेंस था कि हम जीतेंगे ही जीतेंगे करके, बट वो 1% डाउट था। वेनस जीत गया था हाँ, बट स्टिल वाइपर जीतना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन वाइपर हार गया एंड लाइक बुरा लगा बट ठीक है हमने एक्सेप्ट किया, वैसा सिचुएशन था कि हमने जो मेहनत करके लेके आए थे वो दिखा, जजेस जब आए यू नो बात करने के लिए उन्होंने वही बोला कि यू डिजर्व टू बी विन एंड दैट वाज एनफ फॉर अस। हम लोग हार जरूर गए थे बट वो लाइन हमारे लिए एनफ था क्योंकि वो ज़्यादा मायने रख रहा था कि ऑडियंस देख रही थी, जजेस होल डे देख रहे हैं कि कंटिन्यूस हम लोग मैच जीत रहे हैं, सब देख रहे हैं राइट। तो वो हार जरूर हारे लेकिन जजेस ने जब आके बोला कि यू डिजर्व टू विन एंड दैट वाज अ लॉट ऑफ यू नो एप्रिशिएशन फॉर अस।
मतलब हार से आपने ये सीखा कि
इवन दो हम हार गए हमारी मेहनत यू नो वेस्ट नहीं गई थी, हमने जो कोशिश की थी जो सपना था वो हमने फुलफिल किया एंड हमने ओवरऑल देखा जाए तो हमने एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दिया।
यस,
हमने ओवरऑल होल जो जर्नी था हमने उनमें यही बताया कि हम सबसे डोमिनेटिंग टीम है नो मैटर व्हाट
एंड
वी एग्जिस्ट।
दोस्तों कभी कभी हमारी जिंदगी में हमें एक मौका मिलता है लड़ने का, खुद को दुनिया के सामने प्रूफ करने का। हम जी तोड़ मेहनत करते हैं जीतने की, लड़ने की, लेकिन दोस्तों कभी कभी हमें हार का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन हमारी हार ये डिसाइड नहीं करेगी कि हम लूजर्स हैं, हमारी मेहनत और हमारी कोशिश डिसाइड करती है। इसलिए दोस्तों नेवर गिव अप एंड डोंट लूज होप। आप सुन रहे हैं मुंबई की गलियों से सोनाली के साथ। मुंबई, न जाने क्या खास बात है इस शहर में, शायद इस शहर में रहने वाले लोग ही इस शहर को खास बनाते हैं। आज मेरा मन किया कि मैं मुंबई थोड़ा घूमाऊं, इसलिए मैं आज मुंबई की सड़कों पर घूम रही थी। चलते चलते मैं काले घोड़े के पास जो छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूजियम है वहाँ पहुँच गई। वहाँ मैंने देखा कि एक महिला ढेर सारे प्राचीन सिक्कों के साथ बैठी हुई थी। मेरी दिलचस्पी उन सिक्कों को देखने के लिए बढ़ने लगी। मैंने दो कदम आगे बढ़ाए और उस महिला से पूछा कि क्या मैं इन सिक्कों को देख सकती हूँ। उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से मुझे जवाब दिया कि हाँ क्यों नहीं, बेशक आप देख सकती है। ये ढेर सारे एंशियंट रेयर कॉइन्स अकबर और खिलजी दौर के थे, यानी कि सन 696 से 1316 तक के एंशियंट रेयर कॉइन्स उनके पास मौजूद थे। मुझे हैरानी पता है किस बात से हुई, मुझे हैरानी हुई कि म्यूजियम दुनिया भर की रेयर चीज़ों को कलेक्ट करके रखता है और वही रेयर चीज़ें कोई उसी की गली में बैठकर बेच रहा है। हैरत अजीब की बात। इन ढेर सारे सिक्कों के पीछे की कहानी आखिर क्या होगी, इसकी क्यूरियोसिटी मेरे दिमाग में बढ़ने लगी। मैंने उनसे पूछ ही लिया कि आपके पास इतने सारे जो ढेर सारे सिक्के हैं वो आए कहाँ से। तब उस महिला ने मुझे इन सिक्कों के पीछे की कहानी बताई। दरअसल जो ये गरीब महिला सिक्के बेच रही थी, ये सिक्के उसके थे ही नहीं, ये सिक्के उसके पति बशीर के थे। उस महिला ने मुझे बताया कि उनके पति 1955 में एक सपने के साथ मुंबई आए थे पानी के जहाज का ड्राइवर बनने की उम्मीद लेकर, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। काम की तलाश में वे इधर उधर भटक रहे थे, तभी उनकी मुलाकात एक पारसी शख्स से हुई जो कि जहांगीर आर्ट गैलरी के पास पुराने सिक्के बेचते थे। उनके अस्वस्थ होने पर बशीर को इन सिक्कों को बेचने का मौका मिला। बस फिर तब से इन अलग अलग सिक्कों को संग्रह कर उन्हें बेचने का शौक बशीर को लग गया। उस महिला ने मुझे बताया कि अब उनके पति अस्वस्थ है, इसलिए घर की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधे पर है, इसलिए अब अपने पति की जगह वह सिक्के बेच रही है। रोज की कड़ी मेहनत करने के बाद 100 या 200 रुपए की प्रतिदिन की कमाई पर इनका घर चलता है। जब वह मुझे अपनी परेशानी बता ही रही थी कि तब एक पुलिस ऑफिसर अपनी कार से उतरा। उसने अपने हवलदार को उन तांबों के सिक्कों के दाम के बारे में पूछा जिस पर भगवान हनुमान और लक्ष्मी जी थी। यह कॉइन्स बेहद पुराने थे। उन्होंने इन सिक्कों का उस महिला से दाम पूछा। मैं मन ही मन खुश हो रही थी और सोच रही थी कि आज तो इनकी अच्छी कमाई हो जाएगी। इतना बड़ा इंसान है, अच्छा दाम तो दे ही देगा। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। उसने उनके हाथ में सिर्फ 200 रुपए की नोट थमाई और कॉइन्स लेकर चला गया। मैं देखते ही रह गई। मैंने बोला, मतलब? उस महिला ने मुझे देखा और मैंने कहा कि ये क्या था। एक तो इतने कीमती सिक्के ले गए और दाम भी ठीक नहीं दिया, और पैसे दिए भी तो ऐसे दिए जैसे कि एहसान जता रहे हो। उन्होंने मुझसे कहा कि जाने दीजिए ना। मैंने उनसे पूछा कि क्यों जाने दीजिए। तब उन्होंने कहा कि मैं उन्हें कुछ कहती तो शायद अगले दिन मैं आपको यहाँ बैठी हुई नहीं मिलती। ये जो वाक्य था ना, ये मुझे बड़ा चोट पहुँचा गया। परिस्थिति मतलब इस हद तक है, यहाँ तक हालात है कि अगर आपको बैठना है तो उनके हिसाब से ही चलेगा। मैंने कहा कि तकलीफ नहीं होती इन सब चीज़ों से। तब उस महिला ने मुझे बताया कि उसकी परिस्थिति अभी खराब है। हाँ, अभी उसके हालात ठीक नहीं, लेकिन उसका हौसला अभी भी बुलंद है। वो अभी भी एक उम्मीद के साथ अपने हालातों से लड़ने के लिए और संघर्ष करने के लिए तैयार है। उन्होंने मुझसे कहा कि ये एक वक्त है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये भी गुजर जाएगा। मैं हंसते हुए निकल ही रही थी कि उन्होंने मुझे रोका और कहा कि चाय पियोगी? मैंने हंसकर कहा कि जी शुक्रिया, नहीं। हाँ, लेकिन आप लेना चाहे तो मैं दिला देती हूँ। उन्होंने कहा, नहीं, आप हमारे यहाँ पहली बार आई है तो आपकी मेहमान नवाजी करना हमारा फर्ज है। काइंडनेस दोस्तों बेहद खूबसूरत चीज़ है। हालात बुरे हैं, परिस्थिति खराब है, गरीब है, लेकिन मुझे ऑफर करने के लिए उनके पास चाय ज़रूर है, जो कि काफ़ी है। क्या खूब कहा है किसी ने, अंदाजे से ना पिए किसी की हस्ती को। अंदाजे से ना पिए किसी की हस्ती को, ठहरे हुए समंदर अक्सर गहरे होते हैं। आप सुन रहे हैं मुंबई की गलियों से सोनाली के साथ। मुंबई, न जाने क्या खास बात है इस शहर में। शायद इस शहर में रहने वाले लोग ही इस शहर को खास बनाते हैं। आज मेरा मन किया कि मैं मुंबई थोड़ा घूमाऊँ, इसलिए मैं आज मुंबई की सड़कों पर घूम रही थी। चलते चलते मैं काले घोड़े के पास, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूज़ियम है, वहाँ पहुँच गई। वहाँ मैंने देखा कि एक महिला ढेर सारे प्राचीन सिक्कों के साथ बैठी हुई थी। मेरी दिलचस्पी उन सिक्कों को देखने के लिए बढ़ने लगी। मैंने दो कदम आगे बढ़ाए और उस महिला से पूछा कि क्या मैं इन सिक्कों को देख सकती हूँ। उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से मुझे जवाब दिया कि हाँ, क्यों नहीं, बेशक आप देख सकती है। ये ढेर सारे एंशियंट रेयर कॉइन्स अकबर और खिलजी दौर के थे, यानी कि सन 696 से 1316 तक के एंशियंट रेयर कॉइन्स उनके पास मौजूद थे। मुझे हैरानी पता है किस बात से हुई। मुझे हैरानी हुई कि म्यूज़ियम दुनिया भर की रेयर चीज़ों को कलेक्ट करके रखता है और वही रेयर चीज़ें कोई उसी की गली में बैठकर बेच रहा है। हैरत अजीब की बात। इन ढेर सारे सिक्कों के पीछे की कहानी आखिर क्या होगी, इसकी क्यूरियोसिटी मेरे दिमाग में बढ़ने लगी। मैंने उनसे पूछ ही लिया कि आपके पास इतने सारे जो ढेर सारे सिक्के हैं वो आए कहाँ से? तब उस महिला ने मुझे इन सिक्कों के पीछे की कहानी बताई। दरअसल जो ये गरीब महिला सिक्के बेच रही थी, ये सिक्के उसके थे ही नहीं, ये सिक्के उसके पति बशीर के थे। उस महिला ने मुझे बताया कि उनके पति 1955 में एक सपने के साथ मुंबई आए थे, पानी के जहाज का ड्राइवर बनने की उम्मीद लेकर। लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। काम की तलाश में वे इधर उधर भटक रहे थे, तभी उनकी मुलाकात एक पारसी शख्स से हुई जो कि जहांगीर आर्ट गैलरी के पास पुराने सिक्के बेचते थे। उनके अस्वस्थ होने पर बशीर को इन सिक्कों को बेचने का मौका मिला। बस फिर तब से इन अलग अलग सिक्कों को संग्रह कर उन्हें बेचने का शौक बशीर को लग गया। उस महिला ने मुझे बताया कि अब उनके पति अस्वस्थ है, इसलिए घर की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधे पर है, इसलिए अब अपने पति की जगह वह सिक्के बेच रही है। रोज की कड़ी मेहनत करने के बाद 100 या 200 रुपए की प्रतिदिन की कमाई पर इनका घर चलता है। जब वह मुझे अपनी परेशानी बता ही रही थी कि तब एक पुलिस ऑफिसर अपनी कार से उतरा। उसने अपने हवलदार को उन तांबों के सिक्कों के दाम के बारे में पूछा जिस पर भगवान हनुमान और लक्ष्मी जी थी। यह कॉइन्स बेहद पुराने थे। उन्होंने इन सिक्कों का उस महिला से दाम पूछा। मैं मन ही मन खुश हो रही थी और सोच रही थी कि आज तो इनकी अच्छी कमाई हो जाएगी, इतना बड़ा इंसान है, अच्छा दाम तो दे ही देगा। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। उसने उनके हाथ में सिर्फ 200 रुपए की नोट थमाई और कॉइन्स लेकर चला गया। मैं देखते ही रह गई। मैंने बोला, मतलब? उस महिला ने मुझे देखा और मैंने कहा कि ये क्या था? एक तो इतने कीमती सिक्के ले गए और दाम भी ठीक नहीं दिया, और पैसे दिए भी तो ऐसे दिए जैसे कि एहसान जता रहे हो। उन्होंने मुझसे कहा कि जाने दीजिए ना। मैंने उनसे पूछा कि क्यों जाने दीजिए? तब उन्होंने कहा कि मैं उन्हें कुछ कहती तो शायद अगले दिन मैं आपको यहाँ बैठी हुई नहीं मिलती। ये जो वाक्य था ना, ये मुझे बड़ा चोट पहुंचा गया। परिस्थिति मतलब इस हद तक है, यहाँ तक हालात है कि अगर आपको बैठना है तो उनके हिसाब से ही चलेगा। मैंने कहा कि तकलीफ नहीं होती इन सब चीज़ों से? तब उस महिला ने मुझे बताया कि उसकी परिस्थिति अभी खराब है। हाँ, अभी उसके हालात ठीक नहीं, लेकिन उसका हौसला अभी भी बुलंद है। वो अभी भी एक उम्मीद के साथ अपने हालातों से लड़ने के लिए और संघर्ष करने के लिए तैयार है। उन्होंने मुझसे कहा कि ये एक वक्त है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये भी गुजर जाएगा। मैं हंसते हुए निकल ही रही थी कि उन्होंने मुझे रोका और कहा कि चाय पियोगी? मैंने हंसकर कहा कि जी शुक्रिया नहीं, हाँ लेकिन आप लेना चाहे तो मैं दिला देती हूँ। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, आप हमारे यहाँ पहली बार आई है तो आपकी मेहमान नवाजी करना हमारा फर्ज है। काइंडनेस दोस्तों बेहद खूबसूरत चीज़ है। हालात बुरे हैं, परिस्थिति खराब है, गरीब है, लेकिन मुझे ऑफर करने के लिए उनके पास चाय ज़रूर है, जो कि काफ़ी है। क्या खूब कहा है किसी ने, अंदाजे से ना पिए किसी की हस्ती को, अंदाजे से ना पिए किसी की हस्ती को, ठहरे हुए समंदर अक्सर गहरे होते हैं। आप सुन रहे हैं मुंबई की गलियों से सोनाली के साथ।